ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने देश की सुरक्षा स्थिति संबंध में सुरक्षा निकाय प्रमुखों के साथ किया विचार विमर्श। सड़क प्रदर्शन में रहे लोगों से अपनी मांगे लेकर संवाद में आने का गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने किया आग्रह। नेपाल को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए अतिरिक्त सुधार के काम करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय निकाय वित्तीय कार्यवाही कार्यदल का है सुझाव। धार्मिक तथा पर्यटकीय जिला मुस्तांग में एक ही दिन में करीब 7,000 पर्यटक हुए दाखिल। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एशिया दौरा हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आज सुरक्षा निकायों के प्रमुखों के साथ विचार विमर्श किया। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुए विचार विमर्श में देश की वर्तमान सुरक्षा स्थिति का विश्लेषण कर आवश्यक कदम उठाने का प्रधानमंत्री कार्की ने आग्रह किया। बैठक में गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल सहित गृह सचिव रामेश्वर दंगाल और चारों ही सुरक्षा निकायों के प्रमुख सहभागी थे। बैठक के बाद गृहमंत्री अर्याल ने विभिन्न मांगों के साथ सड़क प्रदर्शन में रहे समूह से संवाद में आने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते समय दूसरों का अधिकार हनन न हो, इस ओर भी संबद्ध पक्ष को सचेत होना चाहिए। बैठक के बाद गृहमंत्री अर्याल ने बताया कि सरकार चुनाव का वातावरण बनाने को केंद्रित है, इसलिए बैठक में सुरक्षा स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया और इसे विशेष प्राथमिकता में रखा गया है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इन दिनों विभिन्न सामाजिक संजाल के जरिए विभिन्न व्यक्तियों और समूह के नाम पर धरना, जुलूस, विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम लगाया था, आंदोलन के कार्यक्रम साझा होने के विषय में गंभीर ध्यानाकृष्ट होने की बात कही है। मंत्रालय के प्रवक्ता एवं सहसचिव आनंद काफले द्वारा जारी किए गए बयान में इस बात का उल्लेख है। बयान में कहा गया है कि देश में अस्थिरता और अशांति सृजित करने वाले स्वार्थ समूह ऐसे विरोध कार्यक्रमों में घुसपैठ कर अराजकता फैला सकते हैं, इस ओर भी सबको सचेत होने की जरूरत है। संपत्ति शुद्धिकरण मामले की निगरानी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निकाय वित्तीय कार्यवाही कार्यदल ने कहा है कि नेपाल अब भी निगरानी सूची यानी ग्रे लिस्ट में है। कल संपन्न हुई एफएटीएफ की चौथी पूर्ण बैठक के बाद जारी किए गए वक्तव्य के मुताबिक नेपाल के सुधार का प्रयास जारी लेकिन अपर्याप्त है और इसमें अतिरिक्त सुधार आवश्यक है। बता दें कि नेपाल ने फरवरी 2025 में एफएटीएफ और एशिया पैसिफिक ग्रुप एपीजी से अपनी संपत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रणाली की प्रभावकारिता को मजबूत करने की उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जताई थी। इसमें सुधार के लिए कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन नेपाल को रणनीतिक सुधार के प्रयास करने होंगे और स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना होगा, ये संकेत एफएटीएफ ने किया है। साथ ही संपत्ति शुद्धिकरण और आतंककारी क्रियाकलाप के कारण निवेश पर होने वाले जोखिम के बारे में भी अपनी समझ को स्पष्ट करना होगा। निष्ठापूर्वक मनाए जाने वाले छठ पर्व की आज से औपचारिक शुरूआत हो गई है। मिथिलांचल समेत तराई मधेश के जिलों के साथ ही राजधानी और देश के अन्य भागों में समेत श्रद्धापूर्वक मनाए जाने वाले छठ पर्व के पहले दिन आज नहाए खाए यानी अरबे अरबाइन विधि अपनाई गई। बता दें कि छठ पर्व की संपूर्ण विधियां चार दिनों की होती हैं और इसी के मद्देनजर तराई मधेश के लोग सरकार की ओर से सिर्फ एक दिन की सार्वजनिक छुट्टी दिए जाने को लेकर ऐतराज जताते रहे हैं, लेकिन छुट्टियां बढ़ाने संबंधी उनकी मांग को अब तक अनसुना किया जा रहा है। संतान प्राप्ति और परिवार के समग्र कल्याण की कामना के साथ छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व अंतर्गत कल कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन खरना और परसों षष्ठी को अस्त होते सूर्य को पहला अर्घ्य और उसके अगले दिन उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य अर्पण के साथ ये महान पर्व संपन्न होता है। हयात होटल की सेवा बंद और कर्मचारियों के प्रवेश निषेध की सूचना संबंध में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री कार्की के संज्ञान लेने के बाद अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल ने हयात रिजेंसी के व्यवस्थापन के साथ आज बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुरक्षा की प्रत्याभूति देने के लिए सरकार तैयार है, साथ ही उन्होंने विचलित हुए बिना सेवा सुचारू करने का आग्रह भी किया। इस विषय में कल फिर होटल व्यवस्थापन के साथ सरकार अतिरिक्त विमर्श करेगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास होनी नेपाल टेलिकमको 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। शहरी विकास मंत्री कुलमान घिसिंग ने सिंहदेवर परिसर में निर्माणाधीन संघीय संसद भवन निर्माण को निर्धारित समय पर ही संपन्न करने का निर्देश किया है। आज निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करने के बाद मंत्री घिसिंग ने ऐसा निर्देश किया। मौके पर ठेकेदार प्रतिनिधि ने बताया कि अब तक 87% काम हो चुका है और भवन के अंदर फिनिशिंग का काम चल रहा है। धार्मिक एवं पर्यटकीय जिला मुस्तांग में एक ही दिन में 6,859 पर्यटक दाखिल हुए हैं। जिला प्रहरी कार्यालय के मुताबिक भैया दूज के अगले दिन राष्ट्रीय गौरव वाले बेनी जोंगसम सड़क मार्ग से इतनी तादाद में आंतरिक और बाह्य पर्यटक मुस्तांग में दाखिल हुए। कल शुक्रवार को ये सड़क मार्ग यात्रीवाहक वाहनों की भीड़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह व्यस्त रहा। मुक्तिनाथ के दर्शन और यहां के रमणीय प्राकृतिक सौंदर्य अवलोकन के लिए सीमापंचक का त्यौहार संपन्न होने के साथ ही पर्यटकों का आगमन काफी बढ़ गया है। बीते आश्विन में 30,547 विदेशी पर्यटकों ने अन्नपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण किया। दक्षिण एशियाई देशों के 10,019 और अन्य देशों के 20,528 पर्यटकों ने इस क्षेत्र का भ्रमण किया। ये जानकारी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना ने दी है। हालांकि बीते भाद्र में हुए जेनजेट के प्रदर्शन के कारण भारतीय पर्यटकों के आगमन में कमी आई है, ये बात परियोजना प्रमुख रविन कडरिया ने बताई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल शुक्रवार को एशिया के दौरे पर निकले हैं। इस यात्रा से उम्मीद की जा रही है कि ये अमेरिका और एशिया के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को कम करने में मदद करेगी और चीन के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारने का रास्ता खोलेगी। ट्रंप का यह दौरा मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया तक फैला है और जनवरी में पद संभालने के बाद ये उनकी सबसे लंबी विदेश यात्रा है। ट्रंप का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव इस महीने के अंत में होगा, जब वे दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में होने वाले एपीईसी शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि दोनों नेताओं की ये बैठक गुरुवार को हो सकती है। ट्रंप ने हाल ही में चीन से आने वाले कुछ उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ घटाने की पेशकश की है, लेकिन बदले में उन्होंने बीजिंग से भी रियायतें मांगी हैं, जैसे अमेरिकी सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू करना और फेंटानिल बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की आपूर्ति रोकना। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में ताइवान का मुद्दा भी शामिल होने की संभावना है। ट्रंप मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आसियान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ये सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब इस क्षेत्रीय संगठन के 10 देशों ने पिछले साल अमेरिका को 312 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो 2017 के मुकाबले दोगुना है। ट्रंप 2017 के बाद पहली बार आसियान सम्मेलन में भाग लेंगे और इस बार चर्चाएं मुख्य रूप से वियतनाम और थाईलैंड पर केंद्रित होगी, क्योंकि ये दोनों देश अमेरिका के व्यापार घाटे में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। व्यापार से इतर ट्रंप का मलेशिया दौरा कूटनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते की प्रगति देखना चाहते हैं। अगर इस मोर्चे पर सकारात्मक परिणाम आते हैं तो ट्रंप खुद को विश्व शांति दूत के रूप में पेश कर सकते हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने देश की सुरक्षा स्थिति के संबंध में सुरक्षा निकाय प्रमुखों के साथ किया विचार विमर्श। सड़क प्रदर्शन में रहे लोगों से अपनी मांगें लेकर संवाद में आने का गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने किया आग्रह। नेपाल को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए अतिरिक्त सुधार के काम करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय निकाय वित्तीय कार्यवाही कार्यदल का है सुझाव। धार्मिक तथा पर्यटकीय जिला मुस्तांग में एक ही दिन में करीब 7,000 पर्यटक हुए दाखिल और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एशिया दौरा हुआ शुरू। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।